ओम शांति। राजयोग शिविर के आज के इस प्रथम सत्र में राजयोग का मुख्य आधार स्वयं को जानना। वास्तव में कई बार ये मन में विचार जरूर चलता है कि आध्यात्मिकता के आधार में आत्मा की वास्तविकता को जानने में क्या जरूरत है, उससे क्या फायदा है। और आज की जीवन शैली में क्या विशेष अंतर आ सकता है, क्योंकि मनुष्य जीवन के अंदर इंसान अपना टाइम वहां ही इन्वेस्ट करना चाहता है जहां से कुछ प्राप्ति हो। बिना प्राप्ति उसको उसके पास इतना समय नहीं जो कहीं भी चला जाए। तो आध्यात्मिकता से जीवन के अंदर ऐसी क्या प्राप्ति है, क्या फायदा है जो इसकी जरूरत महसूस हुई है। महाभारत की बात याद आती है कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा था जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास, निराश, हताश हो गया कि उसने भगवान से विनती किया, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट, और अपने शस्त्र छोड़ दिए। क्या कहेंगे, उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया या भगवान उसके साथ थे, विजय उसके निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनोदशा? तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम था। लेकिन फिर भी जब ऐसी मनोदशा आई जिसको आज के युग में अगर कहे कि डिप्रेस्ड हो गया वो, और उस समय भगवान ने उसको गीता का ज्ञान देना आरंभ किया, 18 अध्याय का गीता का ज्ञान, 700 श्लोक, कहा जाता है कि 45 मिनट में भगवान ने ये ज्ञान दिया और 45 मिनट में उसको मोटिवेट कर दिया, जो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। यानी आध्यात्मिकता में वो ताकत है जो 45 मिनट्स में एक डिप्रेस्ड व्यक्ति को मोटिवेट किया जा सकता है। सबसे बड़ी उपलब्धि आध्यात्मिकता की यही आज के युग में है, और इसीलिए इसकी आवश्यकता भी महसूस होती है। भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को दूसरे अध्याय में ही आत्मा का ज्ञान दिया और योग सिखाया। आज की दुनिया में योग योगा हो गया, जो एक्सरसाइज या आसन या प्राणायाम तक सीमित हो गया। लेकिन भगवान ने जब अर्जुन को योग सिखाया तो कहीं पर भी न आसन सिखाए, न एक्सरसाइज बताई, न प्राणायाम बताया। फिर भी गीता का हर चैप्टर योग है। तो वो योग कौन सा था और उस योग के विषय में आज तक हमें क्यों नहीं बताया जाता है? आत्मा के ज्ञान में ऐसी कौन सी बात बताई जो अर्जुन के अंदर पुनः वो शक्ति जागृत होने लगी। योग अर्थात सिंपल शब्द में संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका भाव है जोड़। जिस तरह वियोग मीन्स सेपरेशन, योग मीन्स कनेक्शन। मनुष्य का कनेक्शन अनेकों के साथ अनेक स्तरों पर रहता है। जब हमारा कनेक्शन भौतिक चीज वस्तुओं से है तो उसको कहा जाता है भौतिक योग। जब मनुष्य का समय के साथ संबंध होता है और समय पर कुछ कार्य हो जाता है तो यही कहा जाता समय का संयोग था जो ये कार्य हो गया। मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ है और किसी इंसान से समय पर कोई मदद मिल जाती है तो यही कहते ये व्यक्ति का सहयोग था। योग कांस्टेंट चलता है हमारी लाइफ में, लेकिन जिस योग की यहां बात की गई है वो है आत्मा का योग पिता परमात्मा के साथ, जो सर्वश्रेष्ठ योग होने कारण उसको राजयोग कहा गया, जिसमें आत्मा का भी संपूर्ण ज्ञान चाहिए और परमात्मा का भी संपूर्ण ज्ञान चाहिए। आत्मा के ज्ञान की बात अगर की जाए तो हम भारतवासी इतना तो जरूर जानते हैं, मानते हैं कि शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति है जिसको किसी ने आत्मा कहा, एनर्जी कहा, सोल कहा, शक्ति कहा, रूह कहा, इतना तो सभी जानते हैं और मानते हैं कि जब वो शरीर में प्रवेश होती है तो शरीर मूवमेंट में आता है और जैसे वो शरीर से निकल जाती है कि शरीर शांत हो जाता है। और क्या जानना है? और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आत्मा के ज्ञान से आखिर हमारे जीवन में क्या फायदा है, क्या प्राप्ति है? हो ना हो, शरीर है, शरीर के साथ आप सब जुड़े हुए हैं, लेकिन आत्मा की वास्तविकता क्या है? जीवन के अंदर उसका महत्व क्या है? तो ये जीवन को अगर देखा जाए, ये जीवन भी एक योग है जहां शरीर और आत्मा का संबंध जुड़ा है। अकेला शरीर है तो जीवन है नहीं कहेंगे, अकेली आत्मा है तो जीवन है नहीं कहेंगे। जीवन माना जहां शरीर और आत्मा का योग या संबंध जुड़ा। इस जीवन के अंदर शरीर की वास्तविकता को हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि शरीर माना पांच तत्व। इसीलिए शरीर को जीने के लिए वही पांच तत्व चाहिए। आज ऑक्सीजन चाहिए, क्यों? क्योंकि शरीर बना है ऑक्सीजन से। पानी चाहिए क्योंकि 60-70% शरीर के अंदर पानी का हिस्सा है। व्यक्ति जब पानी पीता है तो सोच के नहीं पीता है कितना पीना है, लेकिन जैसे ही अंदर का वाटर लेवल बैलेंस होता है कि अपने आप ग्लास छोड़ देते हैं। तो ये पांचों तत्व ये शरीर की वास्तविकता है, और इसीलिए कुदरत ने ये पांचों तत्व हर इंसान के लिए, तो क्या हर प्राणी मात्र के लिए एक समान बना के रख दिए। कोई भेदभाव नहीं किया कि भारत वालों को अलग क्वालिटी की हवा पानी मिलेगा, दूसरे देश वालों को अलग क्वालिटी की मिलेगी, या हिंदू धर्म वालों को अलग मिलेगा, दूसरे धर्म वालों को अलग मिलेगा, या अमीरों को अलग मिलेगा, गरीबों को अलग मिलेगा। नहीं, कोई भेदभाव नहीं किया। पांचों तत्व हर प्राणी मात्र के लिए कुदरत ने एक समान बनाकर रख दिए। ये शरीर की वास्तविकता है। इस शरीर में जो चैतन्य शक्ति आत्मा है, क्या आत्मा को भी जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए या नहीं चाहिए? शरीर को पांच तत्व चाहिए, शरीर में आत्मा को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? कुछ चाहिए? मेडिटेशन। मेडिटेशन भी क्यों चाहिए? क्या मिलेगा? आत्मज्ञान चाहिए। आत्मज्ञान से क्या मिलेगा? शांति मिलेगी, और परमात्मा से भी कनेक्शन क्यों चाहते हैं? एनर्जी मिलेगी और शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, पावरफुल होंगे, पवित्रता होगी। हर आत्मा को जीवन जीने के लिए सात बातें चाहिए, शरीर को पांच चाहिए। जिस तरह से शरीर में कोई भी बीमारी का कारण ये पांच तत्व थोड़ा इम्बैलेंस होने लगा कि बीमारी आरंभ होती है, जब तक ये बैलेंस में है तब तक एक बच्चा खेलता है, कूदता है, सब कुछ करता है, कोई बीमारी नहीं, स्वस्थ है। लेकिन ये इम्बैलेंस होने से, इतना तो आप सभी मानते हैं, ठीक इसी तरह बीमारी का एक और कारण भी जो बताया गया कि ये सात बातों का इम्बैलेंस से बहुत कई बीमारियां शरीर में आने लगती है, क्योंकि आत्मा का सीधा संबंध शरीर के साथ है। साइकी और शरीर, तो इसीलिए साइकी में भी जब इम्बैलेंस होता है तो शरीर में भी कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो आत्मा की वास्तविकता सात बातें, सात गुण है, जो सात गुण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। उसमें सबसे पहला गुण वो है ज्ञान, आत्मज्ञान। किसी ने कहा ज्ञान की आवश्यकता, खाली आत्मज्ञान नहीं लेकिन जिसको कहा जाता है स्पिरिचुअल विजडम। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को भी सबसे पहले ज्ञान दिया, वो स्पिरिचुअल विजडम दिया, जिससे उसकी चेतना को जागृत करने का प्रयत्न किया, उस कॉन्शियसनेस को जागृत किया। दुनिया का ज्ञान, भौतिक ज्ञान की कोई कमी नहीं, बड़े बड़े एनसाइक्लोपीडियाज हैं, लेकिन कहा जाता है कि वी हैव लॉस्ट विजडम in knowledge, and we have lost knowledge in information. आज की दुनिया सूचनाओं की हो गई, इंफॉर्मेशन की हो गई, और इसीलिए वो इंफॉर्मेशन में उस ज्ञान को कहीं खो दिया, लुप्त हो गया, और उस ज्ञान के अंदर आध्यात्मिक प्रज्ञा को खो दिया, स्पिरिचुअल विजडम को हमने खो दिया, और इसीलिए स्पिरिचुअल विजडम से काफी दूर चले गए हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई, लेकिन उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को लुप्त या गायब कर दिया, वो नहीं रही. आज एक छोटा बच्चा पैदा होता है जब, और रोता है, और उस समय उसके सामने कोई आवाज करने वाला खिलौना रख दो, शांत हो जाता है, समझने का प्रयत्न करता है यह आवाज कहां से आ रही है. जिज्ञासा उस घड़ी से है, जब वो बोलना भी नहीं सीखा है, उस समय से जिज्ञासा जागृत है कि आवाज कहां से आ रही है. थोड़ा बड़ा होता है, उस खिलौने को तोड़ने का प्रयत्न करता है कि आवाज कहां से आ रही है ये मैं जानूं. जिज्ञासा उस उम्र से है. तो आवश्यकता सबसे पहले जीवन जीने के लिए है ज्ञान. बचपन से इसीलिए यही प्रार्थना सिखाई जाती है, अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु. आज जितना भी ज्ञान हासिल किया, क्या ज्ञान बढ़ा या अज्ञान की ओर ही बढ़ते गए, क्या कहेंगे? ज्ञान बढ़ा या अज्ञान बढ़ा? अज्ञान बढ़ा. कैसे? मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अज्ञान अगर है तो वो है अहंकार. ईगो इज द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस इन ह्यूमन लाइफ. और जैसे जैसे एक बच्चा बड़ा होता जाता है, अभिमान बढ़ता जाता है. तो ज्ञान के तरफ गए या अज्ञान के तरफ गए? अज्ञान के तरफ ही गए. इसीलिए किसी ने बहुत सही कहा है कि सारी ज्ञान की पुस्तकों को लाइब्रेरी से ले आए और रास्ते पर रख दे, पाइलअप कर दे, और उसकी होलिका जलाई जाए तो द हीट प्रोड्यूस्ड इज मोर देन द लाइट. और सही में आज यही हो गया है. मनुष्य ने जो ज्ञान हासिल किया, अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई. एक दूसरे के साथ कैसे पेश आना है? आज क्यों इतने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? क्या कहेंगे? ईगो क्लैश. और उस ईगो क्लैश का कोई सॉल्यूशन नहीं है. परिवार टूट रहा है, संबंध टूट रहा है. कारण क्या हुआ? अंडरस्टैंडिंग की कमी या मिसअंडरस्टैंडिंग. ज्ञान का अभाव, ज्ञान माना समझ, अंडरस्टैंडिंग. अगर अंडरस्टैंडिंग की ही कमी हो जाए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए बात बात में, तो ज्ञान आया कि अज्ञान आया? इसलिए कहा अहंकार की गर्मी जरूर बढ़ गई, व्यवहार में रोशनी नहीं आई। एक दूसरे के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए वो नहीं आया। ज्ञान माना लाइट, नॉलेज इज लाइट, वो लाइट कहां है? हीट है, हीट जनरेट हो रही है संबंधों में। इसीलिए कितने परिवार टूट रहे हैं, कितने संबंध टूट रहे हैं। तो ज्ञान कहां है? आवश्यकता है ज्ञान की, समझ। आध्यात्मिकता वो समझ देता है जहां हम अपने आप को जान सके, दूसरों को भी समझ सके, और उसके आधार से जो प्रकाश चाहिए, रोशनी चाहिए व्यवहार में, उस रोशनी को हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करें। गर्मी नहीं चाहिए। तो अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। तो सबसे पहली आवश्यकता है ज्ञान की, अंडरस्टैंडिंग की। अगर अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रिएट हो जाती है वो समाप्त हो जाए, और परिवार के अंदर कितने आपस में एकता को अनुभव कर सके, एक होने का अनुभव हो सके। ज्ञान के साथ साथ दूसरी चीज जो आवश्यकता है मनुष्य जीवन में वो है पवित्रता की, प्यूरिटी। आज बच्चा जब पैदा होता है तो कितना प्योर एंड इनोसेंट होता है, ये उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। लेकिन आज उस आइडेंटिटी से भी व्यक्ति कितना दूर चला गया। आज कितनी इम्प्यूरिटीज हमारे जीवन में आ गए, थॉट लेवल से लेकर के हर स्तर पर, एटीट्यूड क्या, परसेप्शन क्या, हर बात में इम्प्यूरिटी आ गई। और इसीलिए व्यक्ति जीवन में अनकंफर्टेबल फील करता है। जहां प्योर वाइब्रेशन है वहां कंफर्टेबल फीलिंग आती है। जितना इम्प्यूरिटीज है वहां अनकंफर्टेबल फील करता है। कल से आप आए हो यहां पर, कंफर्टेबल हो? ये कंफर्टेबल शायद आपको फिजिकल कंफर्ट्स नहीं है इतने जो आप अपने घर में अनुभव करते हैं। तो ये कंफर्टेबल फीलिंग जो आई किस चीज से आई? प्योर वाइब्रेशंस। ये प्योर वाइब्रेशंस जो है ये कंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है, इजीनेस महसूस कर रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं लग रही है। जो दुनिया के अंदर हर स्तर पर कॉम्प्लिकेशन, चाहे रिश्तों में, भावनाओं में, चाहे स्थान को लेकर कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ गई है, और यहां इजी है, एकदम जैसे हल्का महसूस हो रहा है। इसलिए कहा जो फिजिकल कंफर्ट्स आपके घरों में है वो नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ये प्योर वाइब्रेशंस जब स्पर्श करता है आत्मा को, इतना रिलैक्स कर देता है। और जहां इंप्योरिटी है, अशुद्धि है, वो अशुद्धि में कभी कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आएगी। तो प्योरिटी चाहिए। तीसरा, जहां अहंकार हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, अशुद्धि हो, उस संबंध में कभी प्रेम पनप सकता है? और आज हर इंसान को क्या चाहिए? प्रेम ही तो चाहिए। कोई है जो कहेगा मुझे नफरत चलेगी? चलेगी नहीं। और आज दुनिया के लिए क्या कहते हैं, नफरत भरी दुनिया है, स्वार्थ भरी दुनिया। प्रेम की जगह किसने ले लिया? स्वार्थ ने ले लिया। इसलिए भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्वार्थ। अच्छा, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको भी आप बड़े प्यार से बोलना शुरू करो, बेटा तू तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है तुमने ये, वो क्या कहेगा? मतलब की बात करो, क्या काम करवाना है? कहेगा या नहीं कहेगा? स्वार्थ। वो भी समझ जाता है आज इतना प्यार क्यों बरस रहा है, जरूर कोई मतलब है। तो मतलब भरी दुनिया हो गई, स्वार्थ भरी दुनिया हो गई। समझ में आ जाता है, एक छोटा बच्चा अगर समझ सकता है तो बड़े तो समझ ही सकते हैं। फिर भी व्यक्ति क्या समझता है कि भाई आज इससे ये काम करवाना है, थोड़ा उसको एक्स्ट्रा मालिश करनी पड़ेगी या पॉलिश करना पड़ेगा, मक्खन लगाना पड़ेगा। तो इसलिए कहा प्रेम नहीं है, मतलब आ गया। और जहां ये तीनों नहीं है, अहंकार है, अशुद्धि है, मतलब है, वहां शांति नहीं। चौथी चीज कौन सी चाहिए? शांति चाहिए। प्रेम भी हर इंसान तो क्या, प्राणी मात्र को प्रेम चाहिए। आज मनुष्य जानवरों को तो प्रेम कर रहा है निस्वार्थ, लेकिन इंसानों के साथ निस्वार्थ प्रेम नहीं रहा। और इसीलिए शांति नहीं। कोई बहुत प्यार से बात करता है तो टेंशन होने लगता है, कहते हैं ना, किसी का चेहरा टेंशन में देखो तो क्या कहते हैं, भाई क्या बात है, इतना टेंशन में क्यों? कहते हैं फलाना व्यक्ति इतना प्यार से बोल रहा है, यही टेंशन कर रहा है, क्या अब कौन सा मतलब होगा उसका, पता नहीं क्या करवाना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो शांति नहीं है। और हमें कौन सी शांति चाहिए? जो बात बात में टेंशन क्रिएट हो रहा है वो यही बताता है कि कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग की कमी, शुद्धि की कमी या स्वार्थ, ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। और टेंशन कितनी बीमारियों का घर है। अब तो डॉक्टर्स हो, टेंशन कितनी बीमारियों का घर है, सब बीमारियों का 80% बीमारियों का कारण साइकोसोमेटिक रीजंस है ना। तो शांति नहीं है जीवन के अंदर। और हर इंसान क्या चाहता है? शांति चाहता है। कल से आप आए हो, शांति है? घर में चार लोगों के बीच में शांति नहीं है और यहां शांति है, इतने लोग हैं फिर भी शांति है ना। मन की स्थिति शांति की है, वो शांति चाहिए। कर्म करने से व्यक्ति थकता नहीं है, लेकिन अगर उस कर्म करते समय शांति हो, रिलैक्स्ड हो, तो वो थकेगा नहीं कभी भी। और जहां ये चारों बातें हैं वहां जीवन में सच्चा सुख सुख है, अंडरस्टैंडिंग है, शुद्धि है, प्रेम है, शांति है, तो सुख है। आज सुख सुविधा के सारे साधन हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। डनलप के गद्दे पर सोने पर भी चैन की नींद नहीं है, गोलियां खानी पड़ती है ना नींद के लिए, तो सुख कहां है? और हर इंसान को सुख चाहिए। इतने सुख सुविधा के साधन के बावजूद भी सुख नहीं है, क्योंकि सुख साधनों में नहीं है, सुख एक मन की स्थिति है। शांति वातावरण में नहीं है, शांति एक मन की स्थिति है। इसीलिए महान आत्माओं ने कहा शांति बाहर नहीं अंदर है, सुख बाहर नहीं अंदर है। लेकिन अंदर कहां है यही पता नहीं। जो उसको बाहर टैप करके ले आए हम जीवन के अंदर, पता ही नहीं। जहां ये पांचों बातें हैं वहां जीवन की सर्वोच्च प्राप्ति आनंद है। आज आनंद तो छोड़ो, खुशी जो फर्स्ट स्टेप, खुशी चाहिए, वो खुशी भी नहीं है। खुशी का अनुभव करने के लिए भी इंसान को लाफिंग क्लब्स ज्वाइन करना पड़ता है, बगीचे में जाके हंसना पड़ता है, घर में हंस नहीं सकता है, कैसी विडंबना है। घर में अगर मुस्कुराया भी तो सबसे पहले तो घर वाले पूछते हैं क्या बात है, आज इतनी मुस्कुराहट क्यों है। और अगर हम रिवील करना नहीं चाहते हैं और कह दिया क्यों भाई मुस्कुरा नहीं सकते हैं क्या, तो क्या कहेंगे, आर यू ओके। माना अगर व्यक्ति मुस्कुरा है तो इज नॉट ओके, उसको हर बार अपना जस्टिफिकेशन देना ही पड़ेगा क्या, ये लाइफ हो गई है ना। अगर मुस्कुराते हुए वर्क प्लेस पर चला जाए तो स्टाफ सारा अंदर ही अंदर इशारा करने लगते क्या बात है, आज बड़े मूड में है, आज जो काम करवाना है वो करवा लो। इसलिए भी व्यक्ति थोड़ा टाइट होके जा, मुस्कुराना भूल गया है। एक बच्चा मुस्कुराता है तो उसको पूछा नहीं जाता क्यों मुस्कुराता है, एक नेचुरल आइडेंटिटी है हमारी। लेकिन हम कितना दूर चले गए हैं जो मुस्कुराना भूल गए, कैसी विडंबना, कैसी क्वालिटी लाइफ की हमने बना दी जो मुस्कुराना ही नहीं है, भूल गए है ना। और यहां कल से मुस्कुरा रहे हैं आप, किसी ने पूछा क्यों मुस्कुरा रहे हो इतना, नहीं नेचुरल स्टेट में आ गए, कितना अच्छा लग रहा है। ये आत्मा की वास्तविकता है। और जहां ये छह बातें हैं वहां आत्मशक्ति, विल पावर, जो पावर चाहिए, रियल पावर, रियल पावर पोजीशन में नहीं है, रियल पावर विल पावर है। लेकिन आज विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, माना अभी से अगर कॉन्फिडेंस नहीं है उनके जीवन में तो उनका भविष्य क्या होगा। तो हर इंसान को शक्ति चाहिए। ये सात गुण ये आत्मा की वास्तविकता है, जिससे आज बहुत दूर चले गए हैं। तो ये सात गुणों का इम्बैलेंस, ये साइकी को इतना इम्बैलेंस कर दिया है। जो व्यक्ति डिप्रेशन या जितने भी साइकोलॉजिकल जो बीमारी कहा जाता है उसका शिकार होता जा रहा है, प्यार की कमी कितने बीमारी को जन्म देता है, प्रेम की कमी से, शांति की कमी से कितनी बीमारी की जन्म होता है। आनंद नहीं, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट्स के रिलेटिव्स को इसको खुश रखना तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर भी खुशी नहीं है लाइफ में, है ना। कई महात्माओं ने इसीलिए अपने नाम के पीछे आनंद जोड़ दिया, ये याद रखने के लिए कि मेरे जीवन का गोल आनंद है। आई वॉन्ट टू अचीव एक्सपीरियंस दैट ब्लेस दैट एस्कसी इन लाइफ, जिसके लिए इतने ड्रग्स निकले और ड्रग्स का शिकार होता जा रहा है मनुष्य, फिर भी वो आनंद का अनुभव तो नहीं है। रियल आनंद क्या होता है ना। तो ये सात गुणों के इम्बैलेंस से साइकी कितनी इम्बैलेंस हो गई है, पांच तत्व के इम्बैलेंस से शरीर के अंदर कई रोग आ सकते हैं, तो साइकी इम्बैलेंस होने से कितने बीमारी आ जाती है। इसीलिए ये सात गुण कहां से मिलेंगे, ये आध्यात्मिकता का स्रोत है, उस स्रोत से प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान ने भी अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले ज्ञान दिया, ये ज्ञान की आवश्यकता है। दूसरे शब्द में अगर मैं कहूं तो ये सात गुण ये आत्मा की बैटरी है, जो आज के युग में कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड है। और जब बैटरी डिस्चार्ज है तो लाइफ की क्वालिटी क्या है आप समझ सकते हो, कि सारे साधन सुविधा सब कुछ होने के बावजूद भी लाइफ क्या है। तो इसीलिए ये बैटरी को चार्ज करना है। मेडिटेशन चार्जर है, इतना तो समझा लोगों ने, इसलिए कहा मेडिटेशन चाहिए। क्यों चाहिए, ये सात गुणों की बैटरी को चार्ज करने के लिए। और ये पावर हाउस है, यहां आए हैं कल से लाइट फील कर रहे हो। क्यों लाइट फील हो रहा है, क्योंकि बैटरी धीरे धीरे चार्ज हो रही है। इसलिए अब ये बैटरी चार्ज करने के तीन तरीके हैं, जानना चाहेंगे कैसे चार्ज करें, आध्यात्मिकता कैसे बैटरी को चार्ज करती है, उसके तीन तरीके हैं। वैसे अननोइंगली भी हमने उसको चार्ज करने का प्रयत्न किया, लाइफ में अननोइंगली भी चार्ज करने का प्रयत्न किया। कैसे किया, पहला तरीका अपनाया हमने अपेक्षा, संबंधों में अपेक्षा, ये व्यक्ति मुझे प्यार दे, ये व्यक्ति मुझे खुशी दे, ये व्यक्ति मुझे सुख दे, है ना। व्यक्तियों से अपेक्षा रखी और फिर क्या कहते, हमने कोई धन दौलत थोड़ी चाहा, थोड़ा सा प्यार तो चाह, इतना भी अधिकार नहीं है क्या हमारा। लेकिन किससे चाह, जिस तरह मेरी बैटरी डिस्चार्ज है तभी तो मैंने दूसरे से चाहा। तो सोचो उसकी बैटरी भी तो डिस्चार्ज है। अब डिस्चार्ज बैटरी को कैसे चार्ज करेगी, इसलिए फ्रिक्शन होती है, क्लैशेस होते हैं और फिर क्या कहते हैं, हमने कुछ नहीं चाहा, थोड़ा सा प्यार चाहा बस, वो भी दे नहीं सकता है, लेकिन हो तब तो दे, सोचने की बात है। आपने उससे अपेक्षा क्यों रखी, क्योंकि आपके पास नहीं था तभी तो उससे अपेक्षा रखी, उसके पास कहां से आएगा? वो आपसे अपेक्षा कर रहा है, आप उससे अपेक्षा कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रही है। और फिर कहते कोई हमें समझ नहीं सकता है, कोई हमें समझता नहीं है। बच्चा आज कहता है माँ बाप हमें समझते नहीं है। Nobody understands us। पहली ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, कोई एक दूसरे को समझ नहीं रहा है ना? तो पहली टेक्निक फेलियर हो गई। जब पहली टेक्निक फेलियर हो गई तो दूसरी टेक्निक अपनाई अननोइंगली। कौन सी अपनाई? कर्म करो, कर्म करने से मिलेगा। इसलिए इंसान वर्कोहलिक बनता जा रहा है। कर्म करो। आज कई लोग समाज सेवा करते, पूछो समाज सेवा क्यों करते, तो क्या कहते हैं? आनंद मिलता है इसलिए। पूछो आनंद मिला तो क्या कहेंगे? अरे इतना पॉलिटिक्स है, आनंद का रोटरी ज्वाइन किया, ये जो लायंस ज्वाइन किया कि भाई थोड़ी समाज सेवा कर लेंगे तो आनंद मिलेगा। लेकिन इतनी पॉलिटिक्स चलती है, फंस गए हम तो। कई लोग पार्टीज में जाते हैं, शादियों पर जाते हैं, पूछो क्यों जाते हो तो क्या कहते हैं? भाई समाज में रहते तो सबके साथ हमारा प्यार बना रहे, कनेक्टेड रहे। पूछो प्यार बना तो क्या कहते हैं? एक को खुश किया दूसरा नाराज हो गया, बना कहां, बिगड़ता ही जा रहा है। तीसरा, कई बार कई लोगों ने सोचा चलो गंगा स्नान करने जाते हैं। भाई गंगा स्नान क्यों करना है? कहते आत्मशुद्धि के लिए। अच्छा, गंगा स्नान करने से अगर आत्मशुद्धि हो जाती थी फिर तो सारे क्रिमिनलों को ले जाकर गंगा स्नान करा देना चाहिए। जेल बनाने की जरूरत है क्या? है ही नहीं। गंगा में डुबकी लगवा दो, छोड़ दो, शुद्ध हो गया। अरे ऐसे आत्मशुद्धि नहीं होती है। तो विभिन्न तरीके, विभिन्न कर्म किए हमने। इंसान धन कमाता है, किस लिए धन चाहिए? धन चाहिए, धन चाहिए, किस लिए चाहिए? कहते धन होगा तो सुख शांति से जी सकेंगे, इसीलिए धन चाहिए। करोड़पति को पूछो सुख शांति आ गई, क्या कहेंगे? भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन यही नहीं दिया। क्योंकि धन कोई माध्यम नहीं है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने का। इट इज नॉट अ मीन्स टू चार्ज द सोल बैटरी। और सोल बैटरी डिस्चार्ज ही होती जा रही है दिनों दिन। तब तीसरा अननोइंगली तरीका अपनाया, कौन सा? भगवान को याद करो। फिर भगवान याद आता है, ही इज द सोर्स, उसको याद करो, वहां से मिलेगा। भगवान से हमने ये सात बातें ही मांगी अननोइंगली। अज्ञान से हमें ज्ञान की ओर ले चलो हे प्रभु। दूसरा कहा, मैली चादर ओढ़ के आया रे द्वार तेरे प्रभु, तू साफ कर देना। भगवान भी पूछता है कब तक, कब तक मैले होते रहेंगे, कब तक मैं साफ करता रहूं? इसलिए उसने भी अभी छोड़ दिया, साफ करना ही छोड़ दिया। साफ तो होना नहीं है, मैं साफ करता हूं दूसरे दिन ये फिर मैले हो जाते हैं, आत्मशुद्धि रहती नहीं है। तभी भगवान ने भी छोड़ दिया, इसलिए इतनी अशुद्धि बढ़ती जा रही है समाज के अंदर, हर प्रकार की अशुद्धि। तीसरा कहा, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। हे प्रभु, एक बूंद भी मिल जाएंगी ना तो जीवन जीने के लिए काफी है, एक बूंद तो दे दे। फिर कहा, हे प्रभु शांति दो, सुख दो। है ना, तो उससे मांगते रहे। अच्छा, जब मांगने पर नहीं मिला तो क्या किया, उसको उसका कर्तव्य याद दिलाया। क्या कहकर याद दिलाया, हे प्रभु तेरा नाम हरि है, तो दुख हर सुख दे, तू ही तो हरि है। उसको याद दिलाया, उसका कर्तव्य याद दिलाया। फिर क्या कहा, हे प्रभु तू सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद दो। जब फिर भी नहीं मिला भगवान से, तो लास्ट में तो धमकी दे दी। क्या कहा, इतनी शक्ति देना दाता जो विश्वास कभी कम न हो। माना अगर मेरा विश्वास तेरे में से कम हो गया तो उसके लिए आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। कि तुमने मुझे शक्ति नहीं दिया इसलिए विश्वास कम हो गया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। दिया ये सात गुण मांगते रहे भगवान से भी। अच्छा, मिला नहीं मिला, क्योंकि कोई चीज थोड़ी ऊपर वाला फेंकेगा और हम रिसीव कर लेंगे। और जब नहीं मिला तो दिनों दिन नास्तिक बनते जा रहे हैं लोग। तो अननोइंगली हमने चार्ज करने का तरीका अपनाया, लेकिन नहीं मिला, तब क्या किया, चौथा तरीका, खत्म कर दो ये जीवन को ही। इसलिए कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, भगवान तो देता नहीं, मनुष्य देता नहीं, कर्म करने से मिला नहीं, तो क्या जिंदगी है। इसलिए जिंदगी को ही खत्म कर दो। हो सकता है जिंदगी से मुक्त होकर के उसका एक्सपीरियंस हम कर सके, मिलेगा जिंदगी को खत्म करने से, मिलेगा नहीं मिलता है, यह भी कोई तरीका नहीं है। आज हम आपको बैटरी चार्ज करने का पहला तरीका बताते हैं। कुदरत का नियम है, व्हाट यू वांट, जो आपको चाहिए आपको देना होगा। व्हाट यू गिव यू गेट, ये इटर्नल लॉ है। तो मांगने से नहीं मिलेगा, अपेक्षा रखने से नहीं मिलेगा, वो कंप्लीट टेक्निक ही रॉन्ग थी। राइट टेक्निक है आप देना चालू करो। इट्स एन एनर्जी, लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, डोंट होल्ड दैट एनर्जी, उसको बहने दो। इसीलिए कहा जाता ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से बढ़ता है। हमने क्या किया, बांटना बंद कर दिया, इसलिए डिस्चार्ज होते गए। इस संसार के अंदर गाड़ी चलाते हैं लोग, गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखने का तरीका क्या है, गाड़ी को चलाओ, बैटरी चार्ज होती रहेगी। गाड़ी को ला करके उसके ऊपर कवर डाल करके गैराज में रख दो, साल दो साल तक चलाओ ही नहीं, क्या होगा, बैटरी डिस्चार्ज। कायदा ये, उसको चलाओ, लेट दिस एनर्जी फ्लो। जितनी ये फ्लो होगी उतना बढ़ता जाएगा, बैटरी चार्ज हो, आपको अपेक्षा रखने की जरूरत नहीं। लेडी डायना, शी वॉज अ प्रिंसेस, बट वॉज शी हैप्पी इन हर लाइफ, नहीं। क्या कमी थी उसको, कौन सी चीज की कमी थी, प्रेम। और उस प्रेम को ढूंढने के लिए कहां कहां गई, और उसी में अंत हो गया उसका। प्रेम नहीं अनुभव कर, सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी उसको, है ना, प्रेम की कमी। तो इसीलिए कहा कि बांटने से बढ़ता है, आप देना चालू करो। देखो इस संसार के अंदर प्रकृति के हर तत्व हमें दे रहे हैं, सूर्य दे रहा है, बारिश, इंद्र दे रहा है, पेड़ पौधे वृक्ष दे रहे हैं। इसीलिए किसी ने वो कविता लिखी है, नदी न पिए अपना जल, पेड़ न खाए अपना फल, सब दूसरों के लिए है। आज एक पेड़ को काटने वाला व्यक्ति, वो भी पहले पेड़ के नीचे बैठ के उसकी छाया में ठंडक का अनुभव करता है, उसके बाद तो भी पेड़ उसको छाया देने से रुकता नहीं है, उसको ठंडक देता है, शीतलता देता है, जबकि उसको मालूम है ये मुझे काटने वाला है। तो ये प्रकृति के सारे तत्व को देवता क्यों कहा गया? इंद्र देवता, वायु देवता दे रहे हैं, वृक्ष देवता, वन देवता क्यों कहा? दे रहे हैं, इसीलिए देवता का। इतना नहीं, लेकिन मनुष्य की बनाई हुई चीज भी दे रही है। आज जिस कुर्सी पर बैठे, कुर्सी आराम दे रही है ना? अगर कुर्सी हटा दिया जाए, नीचे बैठो, अरे आजकल हर एक को घुटनों का प्रॉब्लम है, बैठने की आदत छूट गई। आप कहेंगे इसे तो कॉन्फ्रेंस में आए ही क्यों, नीचे बैठना था तो, या बाहर माउंट घूम के आते, चलो घूमने चले जाएंगे, नीचे बैठना नहीं होता है। तो कुर्सी आराम दे रही, ये माइक दे रहा है, ये लाइट दे रहा है, ये छत दे रही है, हर चीज तो इंसान की बनी हुई दे रही है, सिवाय इंसान। इंसान ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, और इस प्रोसेस में देना भूल गया। तो ये सारी चीजें देवता हो गई और इंसान लेवता हो गया, है ना? इसलिए बैटरी डिस्चार्ज होती गई, डिस्चार्ज होती गई, देना चालू करो। कहा जाता है आप किसी को सम्मान देंगे, आपको सम्मान मिलेगा। चीज वस्तु देने की बात नहीं कर रही हूं, उसके सिवाय भी बहुत कुछ देने की चीजें हैं। आप किसी को सहयोग दो, सहयोग मिलेगा। आप किसी को शुभ भावना दो, आपको शुभ भावना मिलेगी। आप किसी को दुआ दो, आपको भी दुआ मिलेगी। इट्स लाइक अ बूमरैंग इफेक्ट, वट एवर यू गिव इट्स गोइंग टू कम बैक टू यू। ये बूमरैंग इफेक्ट है, जो आपने देना शुरू किया वो वापस आएगा, आपके पास भी आएगा। आप किसी को गाली दो, वो भी वापस आएगी। खुशी दो, खुशी वापस आएगी। तो इसीलिए कहा कि हम देना भूल गए। एक बहुत सुंदर दृष्टांत याद आता है। एक बार एक राजा था, और राजा के पास इतनी सारी गिफ्ट, क्योंकि वो बहुत ट्रैवलिंग करता था, तो देश विदेश से इतनी अमूल्य गिफ्ट्स उसको मिली थी। इतनी गिफ्ट्स हो गई कि महल में रखने की जगह नहीं। तो उसने सोचा अभी क्या करे, इतनी सारी गिफ्ट को कुछ तो करना पड़ेगा। किसी ने कहा म्यूजियम बना दो। कहा नहीं, म्यूजियम नहीं बनाना है। तो कहा क्या करेंगे? तो कहा मैं क्यों नहीं अपनी प्रजा में बांट दूं, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन दिखाते जाएंगे कि भई यहां के राजा ने मेरे पिताजी को ये गिफ्ट दिया था, है ना? आई विल बी रिमेंबर्ड टिल ही चीज। तो उसने ऐलान कर दिया कि भई राजा जो है गिफ्ट देगा संडे के दिन, जिसको भी गिफ्ट चाहिए, राजा के अमूल्य उपहार जो है वो चाहिए, वो लाइन लगा दे। तो संडे का दिन जैसे आया तो देखा इतनी लंबी लाइन थी गिफ्ट्स लेने के लिए। तो राजा बाहर निकला, देना शुरू किया उसने। तो जब देता था तो सामने वाला क्या कहेगा? खाली थैंक यू कहेगा राजा को, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको सुखी रखे, आपकी लंबी आयुष्य हो, आप चिरंजीवी रहो। तो नेचुरल है, जब दुआ मिलती है तो फील गुड, कितना फील गुड होता है। और राजा के चेहरे पर जो एक प्रसन्नता थी, एक आनंद था और एक संतुष्टता का भाव था। तो उस लाइन में एक फकीर था, वह फकीर बार बार राजा को देखे, कितनी प्रसन्नता, कितना संतुष्टता का भाव, कितना जैसे एक सेटिस्फेक्शन उसको मिल रहा है, कितना सुकून महसूस कर रहा है। तो फकीर ने सोचा, ये भाव मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। फकीर था तो उसने सोचा, ये भाव मुझे भी एक्सपीरियंस करना है। लेकिन फकीर ने सोचा, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने का, मैं क्या दे सकता हूं जो इस भाव को मैं एक्सपीरियंस करूं। उतने में सोचते सोचते उसका नंबर आ गया। तो जब नंबर आ गया तो उसने पीछे वाले को कहा, आप आगे जाना चाहेंगे? अब कौन नहीं जाना चाहेगा? कहा, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे। और जब आगे बढ़ा तो वो पीछे वाला जब आगे बढ़ा तो वो भी उसको कहा, भगवान आपको सदा सुखी रखे, सदा खुश रखे। तो उसको भी अंदर से कुछ मिलने लगा, बड़ा खुश होने लगा। कहा, जो भाव में बिना पैसे बिना चीज खर्च के खाली एक टर्न ही तो आगे देना है। तो उसने दूसरे को आगे जाना चाहे, कहा क्यों नहीं, वो भी ब्लेस देख करता हुआ चला गया। तीसरे को कहा, चौथे को कहा, उसने कुछ नहीं लिया, लेकिन उसको बड़ा सुकून मिला। जो दुआएं उसको देता गया तो बड़ा सुकून का अनुभव हुआ, वो प्रसन्नता, वो सेटिस्फेक्शन उसको मिला। तो जब सारी लाइन खत्म हो गई, उसने तो कुछ लिया नहीं, चला गया। फिर राजा ने अपने गुप्तचरों को कहा, जरा नगर में घूम के तो आओ कि लोग मेरे विषय में क्या बात कर रहे हैं। जिज्ञासा तो होती है, भाई मैंने इतना बांटा, पब्लिक क्या कह रही है। तो गुप्तचर गए तो सभी बात कर रहे थे कि राजा ने कितने अमूल्य उपहार दिया, कितनी बड़ी दिल है, कितनी उदारता है, बड़ा अच्छा अच्छा बोल रहे थे। लेकिन फिर कहा, लेकिन उस लाइन में एक फकीर था जिसने कुछ नहीं लिया और वो हरेक को आगे करता गया, है ना, तो उसकी भी महिमा हो रही थी। तो गुप्तचरों ने आकर के राजा को सुनाया कि राजा, सभी बहुत खुश है और प्रसन्न है और खूब महिमा कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ एक फकीर की भी महिमा हो रही थी। राजा ने कहा, क्या बात है, फकीर ने क्या दिया? कहा, कुछ नहीं, उसने टर्न आगे किया, अपना टर्न देता गया सबको। तो कट खाली टर्न देने में उसकी भी महिमा होने लगी। बोले, वो फकीर को ले आओ। कहा, वो तो कहां चला गया, क्या मालूम। तो राजा ने कहा, चलो दोबारा ऐलान करो, जिसको गिफ्ट चाहिए वो वापस आ जाए, वो फकीर आएगा जरूर। तो जैसे ही अनाउंस किया कि राजा दूसरी गिफ्ट्स भी बांटेगा, तो फिर लंबी लाइन लग गई, फिर वो फकीर आ गया। तो जैसे ही फकीर आ गया, वो दूसरों को आगे करने लगा। राजा ने देखा, राजा ने लाइन को स्टॉप किया, फकीर को कहीं धरा, तेरे को क्या चाहिए, जो चाहिए वो लेकर चला जा, ये लाइन में लोगों को आगे नहीं कर तू। तब फकीर कहता है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। कहा, क्या चाहिए था? कहा, वही सुकून चाहिए था, वही प्रसन्नता चाहिए थी, वही आत्मसंतुष्टि चाहिए थी जो मैं आपके चेहरे पर देख रहा था, मैं वो अनुभव करना चाहता था। तब मेरे को ये तरकीब सुनी सूझी और मैंने लोगों को आगे करना शुरू किया और मुझे मिलने लगा। जीवन में आप भी किसी को अगर आगे बढ़ा सकते हो तो क्या मिलेगा। लेकिन आज मनुष्य का दिमाग संकुचित हो गया है, अगर उसके पास कोई चीज है तो वो बांटना नहीं चाहता है, शेयर करना नहीं चाहता है। और जितना हम उसको होल्ड करने का प्रयत्न करते हैं तो हार्ट में क्या होता है, संकुचित होने, बड़ी दिल रखो। हमारे दादी जी हमेशा कहती थी, बाबा हमेशा कहते, बड़ी दिल से बांटना शुरू करो, देना शुरू, आपके पास जो है देना शुरू करो, देखो कितनी प्रसन्नता मिलती है, है ना। इसीलिए पहली टेक्निक, चार्ज करना है बैटरी को तो क्या करो, देना हाथ ऐसे हो, देवताओं का हाथ हमेशा ऐसा होता है, देना चालू करो, देखो आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो जाएगी। परिवार के अंदर अंडरस्टैंडिंग जैसे बढ़ने लगेगी आप शेयर करना चालू करेंगे तो, परिवार के अंदर भी जो खुशियां गायब हो गई है, कहां गुम हो गई है, वो खुशियां मिलना चालू हो जाएगी। मुझे मिले ये अपेक्षा छोड़कर देना चालू करो, ये पहली सीक्रेट है। व्हाट यू गिव यू गेट, दिस इज द इटर्नल लॉ। इस लॉ को जिसने समझ लिया वो एंजॉय करता है लाइफ को। आध्यात्मिकता यही लॉ प्रैक्टिकल फॉर्म में ले आता है, इसलिए आध्यात्मिकता चाहिए आज के युग में, क्योंकि आज का युग में लोग बड़े सेल्फिश हो गए हैं, बांटना नहीं चाहते हैं। तो देना, बड़ी दिल रखो, देना चालू करो, देखो कितना खुशी मिलती है। दूसरा तरीका चार्ज करने का, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। चिंतन की क्वालिटी देखो कौन सी है ना। कहा जाता है बी पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग करो, ये कहा जाता है। इतनी जागृति आ गई है इस बात की कि आजकल घर में छोटे बच्चे भी जब माँ बाप को टेंशन में देखते हैं तो क्या कहते हैं, बी पॉजिटिव। लेकिन ये सिर्फ दूसरों को सलाह देने तक। कोई दूसरा टेंशन में होता है, अशांत होता है, तो हम उसको कह सकते बी पॉजिटिव। लेकिन जब हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए, ऐसी बात आ जाए और हम टेंशन में आ जाए और वो व्यक्ति हमें याद दिलाता है, हमें तो बड़ी अच्छी सलाह दे रहे थे बी पॉजिटिव, अब तुम्हारा क्या हुआ, तो क्या कहेंगे? डू वी रियली एडमिट कि हाँ हम भी टेंशन में आ गए? हम क्या कहते हैं, तेरी बात अलग थी मेरी बात अलग है। तेरे केस में तो आज भी हम कहेंगे तो बहुत नेगेटिव था, मेरा तो केस ही अलग है ना। आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल, है नेगेटिव थिंकिंग, लेकिन क्या कहते हैं, मैं प्रैक्टिकल बनने का प्रयत्न कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू बी प्रैक्टिकल। वी नेवर रियली एडमिट कि यस आई एम ऑल्सो नेगेटिव, मैं भी पॉजिटिव थिंकिंग मुझे भी करना चाहिए। नहीं, दूसरों को सलाह अच्छी दे। आजकल तो इतना अच्छा हो गया, व्हाट्सएप पर सुबह सुबह कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ जाते हैं। जैसे ही किसी का मैसेज पढ़ा बड़ा अच्छा लगा, फिर याद आता है ये फलाने के लिए बड़ा अच्छा है, इसको भेज दो। मैंने मेरे लिए नहीं है वो, दूसरों के लिए, और वो 10 दिन के बाद फिर घूमते घूमते वापस हमारे पास ही आता है। बी पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब दूसरों को मैसेजेस अच्छा भेजो, मुझे नहीं चाहिए, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। ये जो साइकोलॉजी हो गई है कि दूसरों को भेजो, है ना, इसलिए इतने मैसेजेस आ जाते हैं जो कई बार तो लगता है इसने पता नहीं कौन सा खोलो ही नहीं, कई मैसेजेस जमा होते जाते फिर खोलो ही नहीं। हजारों मैसेजेस आ जाते होंगे आप लोगों के पास भी, और इतना टाइम नहीं है कि एक एक मैसेज को पढ़े आप, लेकिन बी पॉजिटिव, है ना। दूसरों को तो बहुत अच्छी सलाह दे सकते हैं, लेकिन खुद की चॉइस क्या है, नेगेटिव। आज अगर कोई भी इंसान, आप देखेंगे ना कोई गैदरिंग में या कहीं पर भी, आपकी हॉस्पिटल में 4-5 लोग मिल करके अगर चाय पर बात करें, ग्रुप हो जाता है और आप शांति से जाकर उनकी बात सुनेंगे ना, तो क्या बात होती है, अरे सुना फलाने का क्या हुआ, और फिर वो दूसरे भी, अच्छा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, और वो स्टोरी गोज एंड ऑन एंड ऑन, और उसमें मिर्च मसाला कितना भी ऐड हो जाता है, है ना। तो जहां नेगेटिव शेयरिंग है वहां ग्रुप भी बड़ा होता जाता है, और कोई पॉजिटिव बातें करे तो क्या कहेंगे, तेरी बातें अच्छी है लेकिन बाद में सुनेंगे, टाइम नहीं है। नेगेटिव बातें सुनने के लिए फुल टाइम है और पॉजिटिव बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, बाद में आएंगे, ये हालत हो गई। इसलिए कहा जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। तो ये दूसरा तरीका है, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे बैटरी चार्ज होने लगेगी अपने आप। जिस तरह से नेगेटिव थिंकिंग में बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है ना, और आज यही ज्यादा आप देखने को मिलता है। मनुष्य जब सोचता है, अगर सारे दिन के विचारों को इकट्ठा किया जाए और एक दिन के विचारों को लिया जाए तो चार प्रकार के विचार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड वेस्ट, फालतू विचार, भविष्य की अननोन फ्यूचर की चिंता जो खाए जा रही है इंसान को। बच्चा छोटा है लेकिन उसका भविष्य क्या सिक्योर करना है मुझे। अरे हर इंसान, हर बच्चा, हर आत्मा अपना भाग्य लेकर आती है, वो आपके भाग्य पर डिपेंड नहीं है। आप इतना इकट्ठा कर लेंगे उसके लिए, लेकिन अगर उसके नसीब में नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, उसका भी तो नसीब होना चाहिए। और आप इकट्ठा करते हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं उसका भविष्य, उसके बच्चे के बच्चे का भविष्य भी मैं सिक्योर कर लूं, लेकिन उसका नसीब भी तो होना चाहिए। इसीलिए हर आत्मा का जब जन्म होता है तो वह अपना भाग्य लेकर आती है, उसके पास्ट कार्मिक हिसाब के आधार पर। इसलिए इतनी चिंता नहीं करो, जितना आपके साथ का कार्मिक अकाउंट है वो तो लेगा ही, आप नहीं देना चाहो तो भी लेगा ही। और अगर नसीब में नहीं है तो आप कितना भी देना चाहो तो भी नहीं लेगा, ले सकेगा ही नहीं। इसलिए इतनी चिंता नहीं करो, अननोन फ्यूचर के वेस्ट थॉट्स हैं, हाँ करो, आवश्यक जहां है वहां पर। लेकिन वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ अनसर्टेनिटी, और उस अनसर्टेनिटी में कितना हम चिंता करते हैं, वेस्ट थॉट्स जनरेट करते हैं, है ना। तो इसीलिए या पास्ट को होल्ड कर रहे हैं या फ्यूचर को पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, और दोनों मेरी कैपेसिटी में नहीं है तो क्या होगा। इसीलिए कह भी पॉजिटिव, तो जितना पॉजिटिव होंगे, अच्छा पॉजिटिव विचार मिलेंगे कहां से, पॉजिटिव सोचने के लिए आज किसी को भी बिठाया जाए ना कि जितना मर्जी आए नेगेटिव सोचो, तो उसके पास इतना मसाला है नेगेटिव सोचने का, घंटों सोच सकता है। और अगर उसको कहा जाए 5 मिनट पॉजिटिव सोचो, 5 मिनट भी पॉजिटिव सोचने का मसाला हमारे पास नहीं होता। 2 मिनट सोचने के बाद फिर इधर उधर देखेंगे दूसरे क्या करना है, पॉजिटिव सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं। तो पॉजिटिव सोचने के लिए 5 मिनट का मसाला नहीं है, और नेगेटिव सोचने के लिए, वेस्ट सोचने के लिए घंटों सोच सके इतना मसाला है आपके पास। पॉजिटिव सोचने का स्रोत या पॉजिटिव विचारों का स्रोत आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, वहां से ही आपको अच्छे विचार मिलेंगे। इसीलिए आध्यात्मिकता का संसर्ग आज के युग में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब उसका संसर्ग होता है तब आपके अंदर भी वो ऊर्जा भरने लगेगी, और आप जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा चिंतन वैसा जीवन। और यही मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है, आत्मचिंतन। चले कुछ देर के लिए आत्मचिंतन करें, तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। स्वयं को आत्मभाव में स्थित करते हैं। अंतर चक्षु से स्वयं को देखें। इस शरीर के भीतर मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। ये शरीर मेरा वस्त्र है जो मैंने धारण किया है संसार रंगमंच पर अपना पात्र निभाने। वास्तव में मैं आत्मा शरीर से भिन्न सूक्ष्म चैतन्य शक्ति प्रकाश पुंजो दिव्य ज्योति स्वरूप अंतर चक्षु से स्वयं को देखे। दिव्य ज्योति पुंज के रूप में मैं आत्मा अपने स्वगुण में स्वयं को स्थित करती हूं। मुझ आत्मा की वास्तविकता पवित्रता है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, एकदम निर्मल शुद्ध। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरी वास्तविकता शांति मेरा स्वधर्म है, स्वगुण है। मन की गति शांत होती जा रही है। शांति मेरी वास्तविकता है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इसी शांति में परम आनंद है। मैं आत्मा सत चित आनंद स्वरूप हूं। मुझ आत्मा की चैतन्यता की अभिव्यक्ति आनंद है। कितनी प्रसन्नता महसूस कर रही हूं, कितना सुकून अनुभव कर रही हूं। इसी शांति में शक्ति है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं। मैं आत्मा सतो गुण स्वरूप। धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को उस परम स्रोत परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूं। धीरे धीरे मन और बुद्धि को वर्तमान में स्वयं को ले आते हैं। ओम शांति शांति।